हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहां हजारों कहानियां हैं आपके लिए। आप हमें सही जगह पर तो लेकर जा रहे हैं ना? नरेंद्र ठाकुर के पीछे चलते हुए सिपाहियों में से एक ने बोला तो ठाकुर अपनी जगह पर रुक गए और उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। वो सारे लोग लगभग 3-4 घंटा से ठाकुर के पीछे उसे जंगल में चल रहे हैं और महात्मा के आश्रम से लेकर एक दिशा में चलते हुए उन लोगों ने अब तक आधे से ज्यादा जंगल पार कर लिया है, या फिर कहो जंगल अब बिल्कुल खत्म होने को आया है। इसलिए एक सैनिक ने ये सवाल किया, ठाकुर की उम्र इस वक्त अच्छी खासी है, उनके बाल भी आदत से ज्यादा सफ़ेद हो चुके हैं, चेहरे पर कुछ झुर्रियां हैं और महात्मा जैसा तेज भी नहीं है, लेकिन फिर भी उनका शरीर स्वस्थ है शक्तियों की वजह से और वो नॉर्मल लोगों से ज्यादा ठीक ठाक चल फिर सकते हैं, जबकि उनकी उम्र के बाकी लोग 70 साल में इतने ऊर्जावान नहीं रहते। ठाकुर ने नाराज़गी जाहिर करते हुए बोला, अच्छा तो तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पर तुम लोगों को भटकाने या तुम्हारा समय बर्बाद करने के लिए लेकर आया हूँ? देखो, मेरे पास खुद इतना फालतू समय नहीं है। ठाकुर को गुस्से में देखकर उसे सैनिक ने तुरंत ही अपनी बात ठीक करते हुए कहा, नहीं, हमारे कहने का मतलब है कहीं आप खुद भी तो रास्ता नहीं भूल गए, क्योंकि ऐसा हो सकता है ये जंगल तो कितना ज्यादा हरा भरा है और इतने सारे पेड़ हैं, ऐसे में रास्ते याद रखना मुश्किल हो सकता है। ठीक है ठीक है, हमें सब समझ आ रहा है, ज्यादा सफाई देने की कोशिश मत करो और चुपचाप से चलते रहो। वो जंगलों के बीच नहीं रहता, वहाँ पहाड़ियों में रहता है और इसके अलावा उसका कोई एक ठिकाना नहीं है, इसलिए जरूरी नहीं, जा, हम जा रहे हैं वहाँ पर तुम्हें वो मिल ही जाए और उसकी गर्दन पकड़कर तुम उस राजकुमारी का पता पूछ लोगे। ये सब कुछ इतना भी आसान नहीं है जितना आसान लग रहा है, ठाकुर ने इस बार एकदम गंभीर आवाज में कहा और दोबारा से मुड़कर वहां से आगे चलने लगे और बाकी लोगों के पास उनके पीछे चलने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है। आगे चलते हुए ठाकुर नरेंद्र प्रताप को थोड़ा डर लग रहा है और वो अपने मन में सोच रहे हैं, क्या हुआ अगर विक्रांत को इस बारे में भनक भी लग गई तो? वो जरूर मुझे गलत समझेगा और उसे लगेगा कि मैं उसे धोखा दे रहा हूँ और इन लोगों की मदद कर रहा हूँ, लेकिन मेरी तरफ से वो इन परिस्थितियों को समझ नहीं सकता क्योंकि मुझे भी ये करना पड़ा, नहीं तो मैं राजद्रोही कहलाता राजा के खिलाफ जाने के लिए, और ऐसा करके इस राज्य में जंगल में कहीं भी रहना मुश्किल हो जाता, बस इसीलिए वो ये मुझे करना पड़ रहा है। अपने मन में ये बात बोलते हुए ठाकुर नरेंद्र प्रताप आगे बढ़ रहे हैं। अब तक रात काफी ज्यादा हो चुकी है, ठंड और कोहरे की वजह से ज्यादा आगे का किसी को भी नजर नहीं आ रहा। आसमान में चांद की रोशनी है लेकिन चांद पूरा नहीं है और उन घने पेड़ों की वजह से वो रोशनी नीचे जमीन तक तो नहीं आ रही जो कि उनका रास्ता दिखाने में थोड़ी भी मददगार साबित हो। 5 बजे राजमहल में राजा महेंद्र प्रताप लगभग दौड़ते हुए रानी के कक्ष के अंदर आए और वहां पर राजवैद्य को बैठे देखकर उनकी तरफ देखते हुए बोले, क्या हुआ है हमारी महारानी को? वैद्य जी, मेरी रानी को बिल्कुल स्वस्थ कर दीजिए, बदले में चाहे आप हमसे जो भी मांग लीजिए, हम सब कुछ देने को तैयार हैं, पहले ही हमारे बच्चे हमसे बिछड़ गए हैं, ऐसे में हमारी पत्नी की ये हालत हमसे देखी नहीं जा रही है। राजवैद्य ने नीचे सिर झुकाकर कहा, हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं महाराज, और महारानी को कोई इतनी बड़ी बीमारी भी नहीं है, बस उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति को खत्म कर लिया है और वो खुद ही जीना नहीं चाहती, लेकिन पूरी तरह से उनके प्लान भी नहीं निकल रहा है क्योंकि उनके प्राण भी अपने बच्चों में ही बसे हुए हैं और वो बस उन्हें देखना चाहती हैं, अगर राजकुमार और राजकुमारी वापस आए तभी कुछ हो सकता है। राजवैद्य की ये बात सुनकर राजा बहुत ही ज्यादा उदास हो गया। अब उसके पास बोलने के लिए भी कुछ नहीं बचा था क्योंकि वैद्य जी जो कुछ भी बोल रहे थे वो बिल्कुल सही था और राजा को भी कहीं ना कहीं ये समझ आ रहा था, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि इसके लिए वो क्या करे, और अपने बच्चों को ढूंढने के लिए उसने महात्मा के यहाँ से भी मदद मांगी है और बाकी जगहों पर भी सैनिकों और सेनाओं को भेजा हुआ है, लेकिन फिर भी अभी तक चंद्रिका या समर में से किसी का भी पता उन लोगों को नहीं चल पाया है। महारानी, हमें आपकी जरूरत है, ऐसे वक्त में हमें भी अपने बच्चों की कमी बहुत खल रही है, जिनके लिए हमने ये सब कुछ किया, इतनी सुरक्षा का इंतजाम किया, लेकिन फिर भी वो हमारे हाथ से निकल गए और पता नहीं इस वक्त कहाँ होंगे, लेकिन आप तो हमारे साथ मत छोड़िए, कम से कम। इतना बोलते हुए राजा ने रानी कादंबरी का हाथ अपने हाथों में ले लिया और उसकी आंखों में आंसू आ गए हैं, लेकिन उन आंसुओं को छिपाता हुआ ऊपर की तरफ देखने लगा क्योंकि वो राजा है और बाकी सबके सामने इस तरह से कमजोर नहीं पड़ सकता, फिर चाहे बात उसके परिवार और पत्नी की ही क्यों ना हो। 5 बजे वसुंधरा और वीरेश एक साथ ही उसे जगह की तरफ बढ़ रहे हैं जहां पर वीरेश ने आग लगी हुई देखा था। चंद्रिका के मन में काफी सारे सवाल आ रहे हैं, लेकिन उसे पता कर वो ज्यादा कुछ भी बोलेगी तो वीरेश नाराज हो जाएगा, इसलिए वो काफी देर से चुप है, लेकिन फिर जब उसे चुप नहीं रहा गया तो आखिर उसने पूछ ही लिया, तुम्हें लगता है यही वो जगह है जहां पर आग लगी हुई थी, लेकिन हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि वो आग और धुआं सिर्फ तुम्हें ही नजर क्यों आया। मुझे और राजकुमार समर दोनों में से किसी को भी जरा सी भी आग और धुआं कुछ भी नहीं दिखता। वैसे भी ये जगह तो वहां पहाड़ी से कितनी दूर है, देखो पहाड़ी भी यहां से नजर नहीं आ रही है। हाँ, तुम लोगों को नहीं दिखेगी क्योंकि तुम लोग सामान्य व्यक्ति हो, तुमने हमारी तरह शिक्षा ग्रहण नहीं की है। हमारी सुनने देखने सूंघने की शक्ति बहुत ही अधिक है सामान्य इंसानों से, क्योंकि हमें इस तरह से ही प्रशिक्षित किया गया है। चंद्रिका की बात का जवाब देते हुए वीरेश ने बहुत ही आराम से बोला। तो चंद्रिका को पहले तो हैरानी हुई कि वो उसे इतनी अच्छी तरह से बात कैसे कर रहा है। इसके अलावा चंद्रिका को ये सब कुछ समझ भी नहीं आता जो कुछ भी आश्रम की शिक्षा और शक्तियों के बारे में वीरेश उसके सामने बोलता है, क्योंकि चंद्रिका इन सब बातों को लेकर बिल्कुल अनजान थी और जितना कुछ भी उसे पता चला है वीरेश को देखकर ही पता चल पाया है। ये देखो, ये सारे जले हुए पत्ते और टहनियाँ देखो, आधे जले हुए हैं इनमें से कुछ, और ये सब भी काले पड़ गए हैं। क्या तुम्हें अभी भी लगता है यहाँ पर आग नहीं लगी होगी? आसपास जलकर काले पड़े हुए वो सूखे पत्ते और टहनियों की तरफ उंगली से इशारा करते हुए वीरेश ने चंद्रिका से कहा। आग लगने वाली बात सुनते ही चंद्रिका को राजकुमारी की फिक्र हुई। हाँ ठीक है, चलो मान लिया, लेकिन ये बताओ कि इस आग और जगह का राजकुमारी से क्या लेना देना हो सकता है? और वसुंधरा अगर यहाँ पर होगी तो उसे कहीं उसकी वजह से कोई चोट ना आई हो, क्या तुम्हें ऐसा लगता है ऐसा कुछ? चंद्रिका की ये बात सुनकर वीरेश को भी ये सोचकर डर लगा, लेकिन वो बिल्कुल भी ऐसा मानना नहीं चाहता, इसलिए तुरंत ही चंद्रिका की बात के जवाब में बोला, नहीं, वो राजकुमारी को कोई भी चोट नहीं आने देगा जो राजकुमारी को लेकर गया है, क्योंकि अगर उसे राजकुमारी को मारना होता तो वो वहां पर ही मार देता, उसे जरूर उनसे कोई और फायदा है।
राजकुमारी वसुंधरा से नहीं, मुझे उसे जो कुछ भी चाहिए असल में वो मुझसे मिल सकता है, और वसुंधरा तो सिर्फ मेरी वजह से ही। वह चंद्रिका के बाद बोल ही रही थी कि तभी वीरेश ने उसके मुंह पर अपना हाथ रखा और उसे चुप रहने का इशारा करते हुए बोला, चुप करो, तुम क्यों कुछ भी बोल रही हो? मुसीबत मोल लेने का शौक है क्या तुम्हें? और ये जगह कोई इतनी सुरक्षित नहीं है, यहाँ पर कोई भी हमारी बात सुन सकता है। और क्या तुम चाहती हो विक्रांत को ये सच पता चले और वो वसुंधरा को छोड़ तुम्हारी जान के पीछे पड़ जाए? वीरेश चंद्रिका को लगभग डालते हुए बोला, और उसकी ये बात सुनकर चंद्रिका को पहली बार उसके मन में अपने लिए फिक्र नजर आई और वो आंखें बड़ी करके उसकी तरफ देखने लगी। वीरेश अभी भी उसके मुंह पर हाथ रखे हुए, तभी चंद्रिका ने ऊपर नीचे अपना सिर हिलाया तो फिर वीरेश ने भी उसके मुंह से अपना हाथ हटा लिया और वो दोनों वहां से थोड़ा और आगे बढ़ गए। अच्छा, तो वो विक्रांत गलत लड़की को लेकर आया है, उसके साथ तो बहुत बड़ा धोखा हो गया। ये तो बहुत अच्छी बात पता चली मुझे, अब मैं इस बात का पूरा फायदा उठाऊंगा। वहीं पर से एक हल्की आवाज गूंजी, शायद किसी ने उन दोनों की बातें सुन ली थी। जिसका डर वीरेश को था वही हुआ, लेकिन वो कौन था वहां पर नजर नहीं आया और वीरेश चंद्रिका के कान तक भी उसकी ये आवाज नहीं पहुंची, लेकिन कोई था जो इस बात का फायदा उठाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका था। इस बात से पूरी तरह से अनजान वीरेश चंद्रिका उस खंडहर की तरफ ही आगे बढ़े। क्या लगता है आप लोगों को, नरेंद्र ठाकुर एकदम सही जगह पर लेकर जा रहा है और क्या उसे पता है विक्रांत के ठिकाने के बारे में? और किसने सुन ली है वीरेश और चंद्रिका की बातें? और क्या वो ये बात विक्रांत तक पहुंचा देगा या इस बात का किसी और तरह से फायदा उठाएगी? क्या चंद्रिका की जान भी खतरे में पड़ने वाली है?